අපායන් මානෙතුමන්දා ඒ සම්බුදිරිය පරදුක්ඛ දුක්ඛි සනා සමත්තම් ප්‍රභුමාත්‍යං ශ්‍රී චෛතන්‍ය මනෝවේ තාපි සංදීන දුකලේ ස්වයං රූපවතාමයන් දබාති
समय ताल जन ना काटे ताल काटले ताल सकाल बेला मंगल आरती समय तुम्हार ताल काटे विशेषकर तुम सर जो जो काम तुम्हें बोलते ही बोलते सर जो जो काम ফুল তাড়াতাড়ি করে বলে দিই ফুল সরজ যত কাম ফুল সরজ যত কাম আর তুমি যদি বলো যে ফুল সরজ ওখানে আরো এখানে সময়তে সেই তালের উপরে তাল দিয়ে সেই তুমি কেটে গেলে তার পিছন পড়বে ওটা চাল যদি কেটে যায় যেন না কাটে सबसे पहले हम लोगों को ये तो बहुत ऊंची बातें हैं और साधक को सब समय याद रखना चाहिए काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य इत्यादि सब सरल रूप से भाई दूर रखने की जरूरत है। विशेष करके हमारा विश्व भर में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा ये क्रोध। क्रोध हितहित के ज्ञान को चौपट कर देता है। इसलिए क्रोध को छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। पहले 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 क्रोध को छोड़ करके लोग गुरु भवन में आते थे, गुरु आश्रम में आते और उनको रखते ही नहीं थे जिनको क्रोध है। किंतु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ठाकुर जी ने विशेष कृपा करके ये आश्रम की स्थापना जैसे क्रोधी लोभी जैसे भी हो कभी करना इसलिए किसी यहां भी आकर के क्रोध पहले तो काम न छिटेगी तभी तो क्रोध छिटेगा। काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य सब छोड़ करके भजन करना चाहिए। यदि ये सब नहीं छूटेंगे तो भजन के नाम पर हम केवल अनर्थ और अपराध में ही संचय करें। भजन तो बहुत ही गुरु जी के समय में कभी ऐसा होता था तो लोग जाकर के तैयार करते थे गुरु जी के पास में, या आप विचार कीजिए ये किसका दोष है। कहते मैं विचार करने के लिए नहीं आया हूं, तुम लोग कोर्ट में चले जाओ सीधा और कोर्ट में परस्पर पेश करके ये फरियाद कर लो। हमारे पास में केवल भजन कैसे होता है बस यही समझने के लिए आओ, और यदि ऐसी फरियाद सुनाने और करने की बात है तो तुम लोग घर में रहो हमारे पास में, नहीं तो अनर्थ हो जाए। इसलिए गुरुवर्गों ने हमें अनर्थ रहते हुए भी आश्रम में रखने की अब जो व्यवस्था की, ये उनका करुणा का परिचय। इधर आ जाओ, परिचय। क्योंकि हम लोग यदि पर किसी को विचार नहीं करेंगे, मनमान्य रूप में सब काम करेंगे, तब भजन तो होगा भी नहीं। उससे बल्कि घर अच्छा होता है, ये तो अपराध नहीं होता। तो इसलिए जिस भावना से उन लोगों ने मठ मंदिर स्थापन किया है, उसको सब समझ करके जीत करके सबसे भगवान का भजन करना चाहिए। ये भगवान का भजन का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, धैर्य तो उसको दूर कर दूर करके किस कपट हृदय होकर के भगवान कर सब ये सब कुछ समझ में आएगा। और नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, बेहतर है बल्कि ये सेठ जल पाइया उपाशाखा बढ़ी जाए। मूल शब्द या मूल शाखा बाहि देना, यदि काम क्रोध लोग के सहित में ये सब सुना जाए तो उपाशाखा माने वो कामना क्रोध लोग वो बढ़ जाएगा। ये सब चीजें भक्ति नहीं होगी। पहले खूब विचार करके भाई हृदय निर्भर करने की चेष्टा करो, जैसे अनर्थ दूर हैं और ये सब चीजें समझें। हमको तो वही सब बातें करनी चाहिए, किंतु करते 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 बहुत दिन हो गया, अब वो हमको वो सब बातें निकलती नहीं, किंतु वही होना चाहिए। तो दो रूप है, मैं तो पाठ करूंगा तो कोई भी चीज पाठ करूंगा तो यही आएगी, ऐसे ही हम। इसलिए फिर हमको पाठ को कर देना पड़ेगा और उसको बैठाना पड़ेगा जो दिन रात यही था। काम को लोग मास्टर जो यही सब बातें करता है, इसलिए पहले ये सब चीजें होनी चाहिए, तब ये समझ में आएगा, नहीं तब समझ में नहीं आएगा। अरे बड़े बड़े विद्वान लोगों को ये समझ में चीजें नहीं आती, तो साधारण रूप में काम क्रोध लोभ मोह वाले लोगों को ये क्या समझ में आएगी। ये तो भजन की परिपक्वता की बातें हम लोग कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने वो बदलाया था, उनके विरह में
सब लोग चले जाने के बाद
उनको विरह में अत्यंत व्यस्त हो, और कारण जिसे आप हमको हमारे अपने चरणों में लिखे आश्रय लेकर, इसलिए कि वहाँ पर सब लोग मिलेंगे और ये विरह का भाव दूर हो जाएगा। किंतु मैं समझता हूँ इन्होंने तो कहा तो है, उनकी जहाँ स्थिति जैसी है, गोलोक वृंदावन में भी जाकर के इनका और भी विरह बढ़ेगा, उनके चरणों में भी इनका विरह बढ़ेगा। वैसी स्थिति बढ़ देना उनने बढ़ आरोग्य, जैसे श्रीमती राधिका जी तो सब समय उनका मिलन है, तो उनको क्यों विरह होता है, और संसार में उनसे बढ़कर के किसी को और विरह है। प्रेम जितना बढ़ता जाएगा, प्रेम ही का स्वभाव है विरह, मिलन में ही विरह होगा। इसलिए ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हम उनसे मिलन में सुख होगा, हमारा विरह भाव दूर हो जाएगा, तो वो तो इस पथ में ना आए। इसमें साधन अवस्था में भी सिद्ध अवस्था में भी ये दोनों समय मिल जाएगा। ब्रजो उत्पन्न सिरासन वसन पात्रादि अहम पदार्थ निर्वाह्य कौन छोटा छोटे वही तो व्याख्या कर पदार्थ निर्वाह्य जवहरि अदम्भम संयम बच्चा मेरी साकुंडे गिरकुल कई समय मरीचे तो वृक्षे सरस खलु जीवादि पूरत सोच रहे हैं कि अब मैं जीवित नहीं रह सकता। इतना भ्रम, इतने भ्रम में व्याकुल हो गए हैं कि रहने की कल्पना नहीं कर पाते। हम लोग को इतना ना हो तो थोड़ा सा तो उनके लिए भ्रम हो। यदि कृष्ण किसी प्रकार से राधा जी की ब्रज के भाव में या कैसे भी भगवत भाव में थोड़ा सा आदमी प्रवेश कर जाए, थोड़ा सा भी आवेश हो जाए, तो जगत के ये टंटे फंटे जो कुछ हैं ये सब कुछ रहेंगे नहीं, अपने आप सब होंगे अपने आप। उसको फुर्सत नहीं है, इसलिए उस समय ऐसी हो जाती है कि न तो वो किसी को उद्देश देता है न दूसरों से उद्देश न होता है। ये भी भक्ति का लक्षण है। जब एक ऐसी स्थिति हो जाती है भगवत भजन में कि न तो वो किसी को, ये 26 प्रकार के लक्षणों में से है महाभाव होते हैं, वो किसी को भी तन मन वचन इत्यादि के द्वारा किसी को उद्वेग, किसी प्राणी को उद्वेग नहीं देता और न तो कोई प्राणी इसको उद्वेग करता, दोनों से अतीत हो जाता है। यही भक्ति का क्लेश रहित होना, क्लेश अग्नि किसी को, किसी को भी क्लेश नहीं देगा और दूसरे उसको कोई भी। नारद जी जब सिद्ध हो गए और भगवान का दर्शन झलक मिल गया और फिर संसार में विचरण करने लगे, अभी शरीर अभी है, अभी भगवत दर्शन या उनको गुरु वैकुंठ की प्राप्ति हुई, उसमें में विचरण करने लगे ना, उस ऐसी न किसी को उद्देश्य देते हैं न कोई के द्वारा उद्देश्य, उनको कोई उद्देश्य नहीं देता और दूसरा कोई नहीं देता। उद्देश्य किसी को कब मिलता है? देहात में बुद्धि रहती है और पूर्व जन्म का कर्मों का संस्कार जब रहता है तभी कोई उद्वेग है, नहीं तो कोई उद्वेग नहीं देता। तो ये उद्वेग हम जो प्राप्त हो रहे हैं किसके वजह से हो रहा है? उसके प्रति हमको लड़ाई झगड़ा मारपीट द्वेष होगा कि नहीं? वैसे महापुरुष, ऐसे महापुरुष न कोई उद्वेग नहीं देगा। इसलिए जो अभी उद्विग्न हो रहे हैं वो अपने कारणों से ही उद्विग्न होते हैं, ऐसा अंततः समझ करके शांति दूर होता
है।
वैसा ही समझना, इसलिए उद्विग्न होने पर भी ये तो मध्यम अधिकार, उद्विग्न होने पर भी उद्विग्न नहीं होता उसको, वो सब कुछ नहीं कर सकते, किंतु उसे ऊपर उठ जाने के बाद में कोई उद्वेग ही नहीं देगा, कारण ही नहीं। सनातन प्रभु को रूप गोस्वामी इत्यादि को अभी तक नहीं सुना गया जब कोई किसी विषय में उठे नहीं, बस एक ही चीज का जो कृष्ण नहीं ये है और कोई दूसरा कोई कर्मजनित उनको उद्वेग न देंगे और न। और साधकों को ये पूर्व जन्म के कर्म से ही उद्वेग होता है, दूसरों को भी उद्वेग देता है, किंतु सच्चे साधक इसके लिए जो चेष्टाएं हैं उसके लिए चेष्टा मैंने भगवत कृपा के लिए प्रार्थना, निरंतर भजन में लगा रहना, भजन के लिए चिंता अवकाश नहीं देना कि वो कैसा है वो कैसा है वो कैसा है वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, इसका लिए कोई उसको अवकाश ही नहीं, ऐसा होने पर सब भजन होता है। रघुनाथ दास गोस्वामी को जब पूरी गए और वहाँ पर संत दामोदर के पास में था, अब उनको कोई भी कारण था उद्विग्न होने का, बस एक उद्विग्न दिन रात रोते रहते थे, अभी तक हमको उनकी पिता नहीं, बस एक ही उद्वेग का था और इसको उद्वेग नहीं था, इसको कहते हैं भजन। ये भजन है, उस समय यह चिंता करना मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे भगवत दर्शन नहीं हुआ या कोई सेवा नहीं हुई, बस किसी में निकल इस दिन रात बस उसी की चिंता होनी चाहिए, तब इसमें कुछ प्रवेश हो। ऐसे भजन करो तुम लोग, रहने पर भी भगवान की कृपा मान करके अपने कर्मों का फल मान करके, दूसरों पर उसको मत करो जैसे इसने किया ही है, बोल जाओ किसी के प्रति भूल करके भी कोई देखना है, ये इसने हमारा अनिष्ट किया है ऐसा भावना आने का, नहीं तो सब भजन नष्ट हो जाएगा। चेष्टा करो, नहीं होगा तो भी चेष्टा, ये हमारे देश का कारण, ये व्यक्ति नहीं है, मैं खुद हूँ, मैं ही खुद मिल जाऊँ, हमारे कर्म मिल जाएंगे, वो भीष्म पितामह जी ने पांडवों को जो सुनाया था, पांडव लोग कह रहे थे जब मैंने इन लोगों को मारा है, इन सब लोगों को वन समय हमने भंग किया, तो इसी के लिए महाभारत में भीष्म पितामह जी ने इनको सुनाया था कि देखो एक ब्राह्मणी थी, उसको एक ही लड़का था, वो 12 वर्ष का हो गया, बुढ़िया का जीवन का सहारा वो लड़का ही था, कुछ नहीं था। एक दिन वो ठाकुर जी के लिए फूल खरीदने के लिए गया और एक सर्प ने उसे और साथ में वो मर गया बच्चा, इसको एक बहेलिया देख रहा था, बहेलिया ने मंत्र के जोर से हाथ की सफाई से उस सर्प को पकड़कर और घड़े में डाल दिया और बंद करके उसका मुंह लेकर के चल पड़ा और बच्चे को गोदी में उठा लिया और चला गया बुढ़िया के पास। बुढ़िया ने देखा कि हमारा लड़का तो एकदम काला हो गया, ये मर गया, उसने उसको सामने लेटा दिया, देखा कि प्राणी में काला हो गया, अब तो बुढ़िया एकदम दंड की तरह में गिर करके और हाय हाय करते हुए विलाप करने लगी। थोड़ी देर के बाद विलाप करने के बाद में बहेलिया ने कहा कि भैया तेरे बेटे को इसने बिना कारण ही सांप ने दस दिया, उस सांप को मैं पकड़ करके लाया हूँ, तुम आदेश दे दो उसको बोटी बोटी काट करके आग में जला दो। एक बार कहा, दो बार कहा, तो उसने विलाप बंद करके बोली, बेटा ये सब के मार डालने से क्या हमारा बच्चा जीवित होकर के आ जाएगा, तुम्हारा ये तो नहीं होगा, क्योंकि सांत्वना तो हो जाएगी तुम्हें, जो हमारा लड़के को काटा था इसने हम उसको मारा, इसलिए तुम आ देख नहीं बेटा, जब भी ये हमारा लड़का आ जाता तब तो मैं कह देती ये तुम मार जाओ, ये भी मैं नहीं कहती कैसे इसको मार जाओ, तुम इसको मारो मत, इसको छोड़ अरे मैया मैं इसको नहीं छोड़ सकता, बिना कारण ही मैंने देखा खुद की इसका दोष था, उसके ऊपर इसका पैर भी नहीं पड़ा, इसने कहा भैया ने कहा कि नहीं छोड़ दो, अब हमारा लड़का तो फिर करते नहीं है, अरे भैया दूसरी को काटेगा ये खल जाती जा बिना कारण दूसरों को भी काटेगा, तीसरे को काटेगा, इसे इसको मार डालना, ये कहकर से बोला या भी मैं इसको मारता, तो सर्प ने कहा भाई मुझे क्यों मारा, तो तुमने क्यों इसको काटा, तो मैंने तो काटा नहीं इसका काल काटा, काटा काल के कानून से मैंने काटा, उसकी प्रेरणा से मैंने काटा, तो जिसकी प्रेरणा से और जो ये दोनों अपराध करते हैं उन दोनों को ही दंड मिलता है, चोरी करता है चोरी के लिए जो प्रेरणा देता है, मर्डर करता है और मर्डर करने में प्रेरणा देने वाले दोनों को ही मर डालते हैं। इतने में काल उपस्थित हो गया, काल ने साफ से कहा तू हमको दोष क्यों देता है, हमने क्या किया, काल किसको कहते हैं, काल कहते हैं उसके पूर्व जन्म के कर्म ही काल बन करके आते हैं, इसमें मेरा क्या दोष है, मैं समझती हूँ जब भी उसका समय आएगा मैं उपस्थित हो जाऊंगी, तो उसका पूर्व जन्म का कर्म ही इस समय काल बन करके आया और मैंने तुम्हारे अंदर में प्रेरणा दी और तुमने ऐ सो मत आंख मत बंद करो, बिना आंख बंद के किसी तरह से खड़े रहो, क्योंकि सुनने की चेष्टा करो, नींद आने पर भी ऐसे ऐसे शरीर उझार करके सुनते, तो ये तो कहानी कह रहा हूँ, कहानी सुनने में क्या है, तो काल ने कहा इसमें मेरा क्या दोष, इसका पूर्व जन्म का जब कर्म ही इसको डसा है, इसलिए हमारे भीष्म पितामह जी उनको समझा रहे हैं पांडवों को, ये आप लोगों ने इसको नहीं मारा, इन लोगों का पूर्व जन्म का कर्म ही काल के रूप में उपस्थित होकर के इनको सब कुछ, ऐसे ही हम लोगों को इन सब इच्छाओं को लेना चाहिए, कब कोई किसी के प्रति शत्रुता इत्यादि भाव नहीं रहेगा, भजन करने के लिए सब सुना नहीं तो उसके आक्रांत चित्त भजन में लगेगा ही नहीं। सब ये सब चीजें समझ में आ सकती है। सब रघुनाथ दास कार्य स्वामी का चरित्र किया है तो ब्रजोत्पन्न किरा प्रसन्न पात्र आदरणीय रघुनाथ दास स्वामी जी आप कहते हैं कि मैं ब्रज के अतिरिक्त कहीं भी नहीं जाना। ब्रज में उत्पन्न गेहूं अथवा चना जो कुछ भी है और उससे जो कुछ उत्पन्न होता है बस अपने शरीर को निर्वाह करने के लिए हमको जितनी जरूरत है वह चीज को नहीं देता। ब्रज से बाहर की कोई चीज नहीं देता। इसलिए ब्रज में गाय होती थी, गाय का दूध दूध के मच्छा इसलिए कि लोगों को दूध को देने में कुछ असुविधा किसी को हो सकती है और जब उसको मंथन करके घी बाहर कर लेंगे और उसमें पानी डाल देंगे वो जब मच्छा हो जाएगा ना तो मच्छा देने में किसी को भी आपत्ति नहीं होती। सभी लोग आसानी से दे सकते हैं और उनके लिए वो जीवन का निर्वाह के लिए वो बन जाएगा। इसलिए वो बस थोड़ा सा मच्छा जीवन के निर्वाह और उपयोग जिससे अधिक नीत भी ना आए, शरीर भी ठीक रहे। शरीर जब बेठीक हो जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा तो भजन नहीं होगा, दुर्बल होने पर भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए शरीर के निर्वाह के ऊपर जीवन निर्वाह उतना ही करेंगे जिससे कि हम मर न जाए और भजन अच्छी तरह से करें। इसलिए वो ग्रहण का होता है। प्रदोत्पन्न किरा दूध दही मक्का घोर इत्यादि हम बसन बसन ब्रज में ही जो उत्पन्न होता है तो ब्रज में देखता है वो कुछ हम लोगों को वही है जो ब्रज में ही उत्पन्न होते। जब अपने देशों को देखते हैं तो ग्लानी आते बड़ी ग्लानी होती है। यहाँ के लोग कांच से बुन करके कपड़े बनाते हैं जैसा मोटा मोटा खादी जैसा उसी का बोलते हैं उसी को पहन लेते हैं। रजाई भी उसी का होता है, हाथ से सूता बना कर क्या उसी पहन सकते। ब्रज में रुई बनी कॉटन उत्पन्न किया और उससे काट करके सूता बनाते हैं और उसी से ही कपड़े बनाते हैं वो उसको बस उसी को मैं खा। ब्रज की बाहर की कोई चीज खा नहीं। जब ऐसे भक्त हो जाते हैं तो उन लोगों की भी ऐसी स्थिति जिसे सब कुछ ब्रज की स्थिति हो, ब्रज की बाहर की स्थिति वो ऐसे ही करते थे। ब्रजवासियों के घर में चले जाते और उनसे उनके पुराने वस्त्रों को मांग लेते और मांग करके बच्चे भी सुख से और पानी के लिए लोटा या लोटी या दो शीतल का ये सब ब्रज के कुम्हार जलपात्र बनाते हैं। क्या करुआ बस करुआ रख लेते हैं बस इसी से पानी कोई चुराहे का भी नहीं कुछ भी नहीं होगा। उनके चीज को देख करके कोई किसी प्रकार का लोग नहीं। इस प्रकार से अपने देह का निर्वाह करके देह जाता निर्वाह कर अभिमान में शून्य होने से अच्छे कपड़े हमें तो जैसे हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं तो अभिमान होता है, दूसरे लोग भी देते हैं अभिमान होता है और जैसा तैसा कर जहाँ तहाँ लोट जाए। अब हम लोग ऐसे अभ्यास हो गए हैं अपराध इत्यादि कुछ चीजें नहीं छात्र के सामने कपड़े में आवृत होकर के दंडोत प्रणाम करना ये दोष है, ये अपराध बनता है, ये सेवा अपराध। कोई पढ़ा है उसने दिया और कपड़े से आवृत होकर के ठाकुर जी को तब हमारे एक हैं डंडा बन के इन्होंने थोड़ा सा सरल कर दिया।
ठाकुर
लाल ने थोड़ा सा ये कर दिया, वो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांग प्रणाम क्यों पंचांग करेंगे तुम्हें, क्योंकि वो विरक्त है ना, तो वो सब कोई ना कोई निकाल लेते हैं अपना अनुकूल कर तुम लोग अनुकूल मत करो जहाँ तक हो सके। देख करके आए पराग बंधन नहीं सुना है, ब्राह्मण बने
उसने
और बतलाओ इस अपराध से ना जन क्या ना ऐसा दीक्षा के रूप में ब्राह्मण होना चाहिए खैर हमको उन सबसे हम अपने को देखें अपने के देखना सबसे हम कैसे ऐसा होकर के सजनता अब ऐसे होने में कोई विघ्न नहीं कर सकता न किसी को वो विघ्न करेगा। ऐसा भी लिखा है कि अपने खाने पीने सोने या किसी भी बात के लिए दूसरे को उद्वेग मत दो कष्ट मत दो यही है किसी भी वैष्णव को अपने खाने पीने पीने जो निर्वाह या किसी भी चीज के लिए किसी को उद्वेग मत दो ये सब साधारण ये चीज है। इसलिए हम लोग इन सब चीजों का पालन नहीं करते और बीच यहाँ तक बढ़ जाता है हजम नहीं कर पाते कलह इत्यादि हो जाता है। इन लोगों का जीवन चरित्र हम लोग यदि लें देखो अपनी आप सब विषय कथाओं से ये सब चीजें होती हैं। विषय कथा इन लोगों में है ही नहीं है तो कुछ भी विषय ही कथा है। जब परस्पर मिलो विषय की बात एकदम मत छोड़ो अभी सभी छात्र सभा वैष्णव सेवा की बातें सीखो इसके अतिरिक्त विषय की बात एक समय उसमें कुछ न जरूर न जरूर कुछ हो जाए कुछ जरूर है। इसलिए ब्रज के उत्पन्न की जो से ही अपना भरण पोषण और आच्छादन ये सब चीजों को बाहर का यहां तक हो सके इसको ग्रहण करने की चेष्टा है हम लोग करें ऐसा निर्वाण क्या हुई तुम अदम्भम अभिमान शून्य होकर के नियम पूर्वक में गिरिराज जी के तट प्रदेश में राधा कुंड के तीर में वसवास करता ये सनक मौका है। हम लोग अभी राधा कुंड के भाव से राधा कुंड के किनारे से भी बहुत दूर हम लोग मथुरा में उनकी ऐसी निष्ठा ऐसी निष्ठा रखने की चेष्टा करें इस जन्म में हो दूसरे जन्म में ऐसी धाम के प्रति निष्ठा हो। अभिमानी शून्य होकर के मैंने किसी चीज का अभिमान नहीं देहात्म बुद्धि दूर होने से ही अभिमान शुरू हो गया। एक बात सुन लो भाई तुम कुछ हट जाओ महाराज जी बात जल्दी जल्दी से ऐसा सुनो तो देहात अभिमान दूर होना चाहिए हम लोगों को देहात अभिमान ही सब बुराइयों की जड़ और भजन न होने का प्रधान कारण जिसका जितने रूप में अभिमान देहाभिमान दूर होगा सिर्फ उपलब्धि होगा साधन भजन भी होगा और देहाभिमान के कारण उठने वाले जितने भी दोष त्रुटि हैं वो सब दूर होगा। इसलिए बद्ध जीवों के लिए साधक के लिए सबसे पहले जरूरी देहात अभिमान बस अंततः ये रखे मैं कृष्णदास कृष्णदास होना बराबर ही कठिन है तभी उपचार के लिए अंततः मैं कृष्णदास हूँ इसकी उपलब्धि हमको हो ऐसी भावना के साथ में साथ गुण और योग्यता रहने पर भी अभिमान नहीं होने से हम लोगों को तो नहीं रहने पर भी कितने तरह का अभिमान ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें अपना एक तिल को भी अपने अभिमान उनके साधु वैष्णवों को अपने में जितना अभिमान कम करेंगे उतना ही उसका भजन सिद्ध होगा। इसी प्रकार मैं बहुत अच्छा मृदंग बजाना चाहता हूँ, मैं अच्छा कीर्तन करता हूँ, बहुत से लोगों को आकर्षण कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छी रूप में मनोहर वक्तृता देता हूँ उसके द्वारा, मैं सुंदर हूँ, मैं गुणी हूँ, मैं योग्य हूँ, मुझे किसकी परवाह है, मुझे किसी की भी परवाह नहीं, क्योंकि मैं सेल्फ सपोर्टेड हूँ, जहाँ जाऊँगा वहाँ पर कुछ काम करके कमा करके खा लूँगा। ये सब जितने प्रकार के अभिमान होते हैं देह में आत्मा का अभिमान होने से होते हैं, साधक को खूब सावधानी के साथ में उनको दूर रखने की चेष्टा करनी चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि अभिमान शून्य होकर के नियम पूर्वक गिरिराजी के सकते हैं। गिरिराजी का सब किस लिए कारण गिरिराजी है, कृष्ण की गोपियों की कथाओं की कृष्ण के साथ में जितनी भी अधिकांश लीलाएं हैं वो गिरिराजी के
बताना।
जब कृष्ण जी बछड़े चढ़ाते थे बाल बालों के साथ में, तो उनके पिता बच्चों के पिता और दूसरे प्रौढ़ लोग गोप लोग गोवर्धन में गाय चरा रहे, और गाय ने बछड़ों को देखा और पुराने बछड़ों को, और नए बछड़े उनके पास ही थे किंतु नए बछड़ों को छोड़ करते पुराने बछड़ों के लिए गलती हुई जगाती हुई गाय हम बारह पर भी दौड़ पड़े, लोग उसको रक्षा नहीं कर सके, घेर करके रख ना सके, वो दोनों पैरों से चारों पैरों से ऊंट को एकदम और बड़े देख से दौड़े, वो दंडे से पीटने लगे घेरने लगे किंतु कोई भी उनको एकदम जहाँ पर बच्चे उनके थे वहां पर आकर के जहाँ पर कृष्ण बंदे सताओं के साथ में बच्चों को चढ़ा रहे थे बच्चरियों को चढ़ा रहे थे एकदम वहीं पर पहुंच गई और उनको चाटने लगी, मानो चाट करके अपने अंदर में ले गई, एकदम अपने अंदर में ग्लीन करने के लिए। उस समय में वो जितने गोप थे प्रौढ़ देखा कि ये बंसी बजा करके दाल को भरका दिया, अभी चल करके गोटा हाथ दे देंगे तीन पाँच दिन भविष्य में ऐसा ना था, बड़े क्रोध से वहाँ पर लड़किया लेकर के दौड़ते हुए हाथते हुए वहाँ पर आए, और जय माँ आया कृष्ण बलदेव और अपने बच्चों को देखा दुनिया में उमड़ा खड़ा क्रोध दूर हो गया और लड़किया बस करके बच्चों को गोदी में लेकर के वो लोग भी नहीं सकते। तो ये गोवर्धन की बातें सुनत भागवत में अन्य कुछ कहाँ हुआ, अन्य कुछ का कारण हमने बताया, अन्य कुछ का दूसरा कोई कारण नहीं, गोपियों ने और कृष्ण ने दोनों ने फूल बना रखा, दोनों दोनों से मिलने के लिए हार्दिक इच्छा थी, जब कृष्ण ने देखा जिसे मिलने का कोई उपाय नहीं तो कोई उपाय करना चाहिए। उस समय कृष्ण मान लो कि पौगंड उम्र में 9 वर्ष की उम्र में 7 वर्ष की उम्र में भी 7 वर्ष अभी पौगंड मिल जाता है पौगंड उम्र की बात, उस समय धीरे धीरे प्रतिकानुकूल उत्पन्न हो सकता है, तो दोनों में प्रतिकानुकूल हुआ और मिलना चाहते हैं, कोई उपाय नहीं है, उनके निकट आने का कोई प्रश्न नहीं है दोनों का। कृष्ण ने कहा कि यदि ऐसे कर दिया जाए जिस बृहस्पत हो विपत्ति आए और उसमें विपत्ति के समय में सब लोग हमारे निकट आएंगे तो सभी लोगों से मिलन हो जाएगा, इसलिए माता पिता को प्रेरणा दे करके और उनकी पूजा बंद करना चाहते इंद्र की और गोवर्धन को की जाती और गोवर्धन को ऊपर धारण किया और कहा कि सब लोग उसी चंद्र में आ जाओ, सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ, कोई बात नहीं सब लोग। यहाँ तक कि जिन गोपियों को कृष्ण के लिए देखना भी मुश्किल था और उन गोपियों को अभी चाहते भी नहीं देख सकते वो लोग भी कृष्ण में सब का समय होने का था, सब लोग नहीं गोपियाँ प्रेम से आकर के एकदम नूतन को कृष्ण के सामने करी और फिर के लिए वहाँ पर धारण कर, पहले कृष्ण का हाथ हिल गया, हाँ हिल गया, इसके बाद में फिर मधुमंगल ने संभाल लिया, ये सब उसकी लीलाएं इसलिए गोवर्धन में सर्वत्र ही उनकी लीलाएं प्रतिदिन कुछ न कुछ लीलाएं होती रहती, कभी कभी इधर उधर नंदगांव से भयगांव और इधर उधर में चले जाते बंदे पर जीत जाते। एक बार में बलदेव जी का अनुष्ठान बलदेव जी का वो प्रवेश भद्रवन महावन ये बाल लीलाएं और पवन में गोचारण की कुछ लीलाएं करते हैं और इधर में राधा जी की अधिष्ठा की गई जमुना के ये पशु का है वो पूर्व का, इधर में राधिका जी की अधिष्ठा की, तो गोवर्धन में अधिकांश के जितने भी विजय हुई हैं सब गिरिराज गोवर्धन उसके साक्षी हैं ये गिरिराज, तो शक्ति में सेवक भी कृष्ण को जब जिस चीज के लिए सखाओं को गायों को जो तक जब जब जिस चीज की जरूरत होती है पानी अपनी जब तक अंदर कंदम हो गई दागो का मैं तो उदार देने कनई कलपटो कलपटो समझुत सक्षम आसंदन जत्नता कुलकत करुणा निर्जोग पास को जब समय इसका पर्यावरण हरिदास वर्ग हरिदास वर्ग जगराम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद क्योंकि चरण की स्पर्श से एकदम प्रमोद में भर जाते हैं उनका सबसे अधिक आनंद बात ऐसे मालूम होते कि जब कृष्ण ने सिखाया होगा उसमें इतने हर्ष में आनंद से पुलकित हो रहे हैं जो बच्चे की मार को भी ऐसे लगता है कि चिल्लाहट हो रही है किंतु मैं समझता हूँ इसे भी उनके आनंद के लिए वो है परमत मदन आसन के लिए उनके प्रत्येक कमरे में उनके उनके जो झरने हैं उसके किनारे और सब जो उनकी कृष्ण की जो गोपियों के साथ में जो पीड़ाएं और विलास होता है वो उनके लिए सर्वोत्तम साधक उनके निकट में इसीलिए जाना चाहता है जो वो सब लीलाएं हमारे हृदय में गोवर्धन राज्य राज्य के दिमाग होती इसके लिए जो सबके साधक राजांगव और सब लोग संसारी कामना वासना और सब चीजों के लिए साधक विशेषता के लिए रूपांग वैष्णव है रघुनाथ के अनुज है कृष्णदास अभिराज गोस्वामी इत्यादि के अंगत हैं बस इसी के लिए इसलिए ये कहते हैं मैं निम्न अभिमान शून्य होकर के अभिमान शून्य ये कहने का अभिमान शून्य नहीं हुआ जा सकता कभी कोई भी तो अभिमान रहेगा जाति का अभिमान न रहे वो अभिमान भी शून्य हो जाएगा तो सबसे भजन करना ही बेकार हो जाएगा शुद्ध अभिमान ये वो अभिमान शुद्ध अभिमान होना चाहिए उसके बिना सब बेकार व्यर्थ है शुद्ध अभिमान राजकार जाति यदि हो अभिमान सिद्ध नहीं जाए सदे वो शुद्ध देह मतलब दिया प्रजवन मागे
वृंदावन मागे
दिया
सेवा मृत करदान
सेवा मृत करदान ललिता सकिय अयोध्या सुन करी अथवा अनुदा सुन करी सुनो खरी से इसलिए देव राज्य की जाते हैं तलाशी में उस प्रकार का भजन करने के लिए उनकी कृपा आने के लिए उसी उपलब्धि के लिए जाते हैं आदमी किसी स्थान पर भजन कर सकता है किंतु सिद्ध क्षेत्र में भजन करने से दूसरा ही भाव सहज रूप में वो भाव सभा उसके लिए अधिक चेष्टा नहीं करनी पड़ती किंतु दूसरे दूसरे स्थानों में जाने से वो वहाँ का ऐसा प्रभाव होता है चोरी डकैती करने वाले या असाधारण विचरण एक नारायण का भजन करके एक व्यक्ति सिद्धि रखे मधुबन कौन ध्रुवन वहाँ पर भजन करो और उसी के नीचे पास में जहाँ पर कृष्ण कुंड है वहाँ पर भजन करो दोनों अंतर होगा कि नहीं अगाध पताल का बहुत अंतर हो जाएगा वहाँ पर भजन करो और पास ही में वृंदावन या राक्षस छवि है सेवा कुंज है राधा कुंज है विराज गोवर्धन भजन करो एक ऐसा भाव मिल जाएगा वहाँ की भूमि संसार में उस लीलाओं की स्तुति होगी इसलिए इन लोगों ने वहीं पर बात करके भजन करने की महत्ता बतलाई बजे अंतर बाह्य रूप से साधक रूप रूप में सेवा साधक रूप में सिद्ध रूप में शास्त्र ही सद्भाव लिप्त न कर्जा बदल लोकानुसार इसके बाद वाले सब समय ब्रज में निवास करके भजन कर हम लोग ये कहते हैं जहाँ पर भी वैष्णव हो जहाँ भी वैष्णव वहाँ पर रह करके भजन करने से वो ब्रजवास के लिए क्योंकि ये साधारण बात साधारण कौन ये यथार्थ में साधारण साधकों के लिए विशेष साधकों के लिए नहीं बड़ी भक्ति मार्गों के लिए और विशेष भजन करना है रूप सनातन इत्यादि की भांति रघुनाथदास गोस्वामी और लोगों की भांति कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसके विश्वनाथ चरपति ठाकुर इत्यादि के इन का कहना कि नहीं भजन ही जाता था तो ब्रज में साधारण न होता है तो मन के द्वारा जाता है भजन का वो भी असमर्थ की स्थिति में हो जाएगा जब ऐसा साधक हो जाएगा ना निरपेक्ष तो वहां पर क्यों रहेगा इसलिए ये आगे या किसी में कहीं नहीं रघुनाथ दास होता कि यदि कोई सिद्ध क्षेत्र भी हो और वहां पर रसिक वैष्णव लोग भी भागवत की कथा कर रहे हैं हो गया है रसी बच्चों ही वो कथा कह रहा है और वसी चक्र हो तो भी मैं वहां नहीं जाऊंगा। यहाँ पर केवल विषय की बातें हैं, ग्रामीण लोगों के साथ में विषय की बातें होती है। मैं बल्कि इसको पसंद करूंगा, किंतु जहां पर हरी कथा हो रही है साधु भी लोग हैं सब कुछ वहां पर मैं नहीं जा रहा, क्योंकि उनकी धाम नहीं मिला। इसीलिए वो कह रहे हैं अनुमान से नहीं होगा, ऐसा ये देहात अनुमान दूर करना ही कभी आनंद हो जाए। देहात अनुमान सब लोग को नहीं कि हम उसके चाहे, मैं अपने लिए भी कहता हूँ आप लोगों से भी सबसे नहीं होगा अनुमान छोड़ सकते। नियम पूर्वक हरिणाम करेंगे, नियम पूर्वक कोई क्लास हरिणाम का कहीं नहीं। जो सतयुग में साधन करता है उसको कोई ये करना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए, और नहीं तो जैसा भी एक नियम बनाओ तो 70,000 करते हैं 50,000 उसके लिए नियम होना चाहिए। प्रतिदिन नियमित रूप में उचित बनना चाहिए, ऐसा नियम बना दिया जाए कि विषय में हमारा देने का समय हमको आए नहीं सभी राज्य के तटक में वो सीधे थे। यो तो वृंदावन चौरासी को किंतु गोकुल में भजन करना एक, वृंदावन में भजन करना एक, खास वृंदावन में ही खास वृंदावन चालीय गांव में कोई भजन कर रहा है और कोई सेवा कुंड और बंसी बट में कर रहा है, इसमें भी कुछ प्रासंग है। जिसकी जैसी भावना रहेगी इसलिए हमारे रूप सनातन और हमारे ये तो वृंदावन में रहते थे तो वहां भी कराना तो नहीं चले जाते थे, नंदगांव में और शेर कदम में या उद्धव प्यारी इत्यादि में बाटल वाले भाव वाले जो हैं वो जसोदा कुंड में नंदगांव में जाएंगे, गोकुल में जाएंगे वहां पर करना। गोकुल में क्यों थे उनको महापुरुष है उनकी कभी चाल जो जसोदा के लाल लेकर किधर से तो सही है, किंतु रहते थे यहाँ रूप गोस्वामी का भी वो भी जाते थे, ये भी पीछे नहीं आए होंगे क्योंकि रूप सनातन से मिलते रहते। तो बसान ईसा कुंडे, ईसा कुंडे मैंने क्या वो कुंडे ईसा कुंडे ईसा कुंडे हमारी तो मधेश्वरी जो श्रीमती राज इन्हीं के वो ही मानी राजा कुंड में बात करने वाला रहता हूँ उसकी भावना का होना चाहिए। यदि कृष्ण से संबंध है तो किस लिए हमारी राधिका जी से हमारी विशाल जी का उनसे संबंध है, मधुकानाथकारी कामनाथ सबसे कृष्ण से हमारा संबंध है कि हमारी ईश्वरी के कामना सदा से इसके संबंध है, वो उनसे संबंध है।